ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 20 जून 2021 बरोज इतवार हफ्ता के अख्ताम पर आपके मतलब की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: क्या कायनात बशमूल इंसान एटमी तवानाई से मुरतब हुई है? सुनहरी मतन इमसाल: खुदावंद ने हिकमत से ज़मीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया। जवाबी मतालिया ज़बूर: आओ हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें, अपनी चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्र करते हुए उसके हजूर हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है और सब इलाहियों पर शाह अजीम है। ज़मीन के गहराव उसके कब्ज़ा में हैं, पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की हैं। समंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसके हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालके खुदावंद के हजूर घुटने टेकें। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। खुदावंद की हमद करो, आसमान पर से खुदावंद की हमद करो, बुलंदियों पर उसकी हमद करो। ऐ उसके फरिश्तों सब उसकी हमद करो, ऐ उसके लश्करों सब उसकी हमद करो। ऐ सूरज ऐ चांद उसकी हमद करो, ऐ नूरानी सितारों सब उसकी हमद करो। ऐ अफलाक अफलाक उसकी हमद करो, और तू भी ऐ फिज़ा पर के पानी। ये सब खुदावंद के नाम की हमद करें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। यसाया: जिसने आसमान को पैदा किया और तान दिया, जिसने ज़मीन को और जो कुछ उसमें से निकलता है फैलाया, और जो उसके बाशिंदों को सांस और उस पर चलने वालों को रूह अनायत करता है, यानी खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, मैं खुदावंद ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी ही हिफाजत करूँगा, और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा, कि तू अंधों की आँखें खोले और असीरों को कैद से निकाले, और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाने से छुड़ाए। यहोवा मैं ही हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी मूर्तों के लिए रवाना रखूँगा। नहमिया: तू ही अकेला खुदावंद है, तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को और ज़मीन को और जो कुछ उस पर है, समंदरों को और जो कुछ उनमें है बनाया, और तू उन सबों का परवरदिगार है और आसमान का लश्कर तुझे सजदा करता है। मत्ती: जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। ऐ खराजीन तुझ पर अफसोस, ऐ बैत सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम्हें ज़ाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सौर और सदा का हाल तुम्हारे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ऐ कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम अरवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजज़े तुझ में ज़ाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के इलाके का हाल तेरे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हमद करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाईं और बच्चों पर ज़ाहिर कं। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहिए। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरौतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती। जब वो भीड़ से ये कह रहा था, उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। यर्मिया। खुदावंद सच्चा खुदा है, वो जिंदा खुदा और अब्दी बादशाह है। उसके कहर से ज़मीन थरथराती है और कौमों में उसके कहर की ताब नहीं। तुम उनसे यूं कहना कि ये माबूद जिन्होंने आसमान और ज़मीन को नहीं बनाया, ज़मीन पर से और आसमान के नीचे से नेस्त हो जाएंगे। उसी ने अपनी कुदरत से ज़मीन को बनाया, उसी ने अपनी हिकमत से जहान को कायम किया और अपनी अक़ल से आसमान को तान दिया। उसकी आवाज़ से आसमान में पानी की फरावानी होती है और वो ज़मीन की इंतहा से बुखारात उठाता है। वो बारिश के लिए बिजली चमकाता है और अपने ख़जानों से हवा चलाता है। मुकाशफा। मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे, जो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। मुकाशफा। फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास ज़मीन पर रहने वालों की हर कौम और हर कबीले और अहले ज़ुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज़ से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खालिक, असूल, खुदा जिसने वो सब कुछ बनाया जो बनाया गया था और खुद के मुखालिफ कोई एटम या अंसर ना बना सका। खुदा कायनात को बशमूल इंसान खल्क करता और उस पर हुकूमत करता है। ये कायनात रूहानी ख्यालात से भरी पड़ी है जिन्हें वो तैयार करता है, और वो उस अकल की फरमाबरदारी करते हैं जो उन्हें बनाती है। फ़ानी अकल मादी को रूहानी में तब्दील कर देगी और फिर इंसान की असल खुदी को गलती की फ़ानियत से रिहा करने के लिए ठीक करेगी। फ़ानी लोग गैर फ़ानियों की मानद खुदा की सूरत पर पैदा नहीं किए गए, मगर लामहदूद रूहानी हस्ती की मानद फ़ानी ज़मीर बिलाखर साइंसी हकीकत को तस्लीम करेगा और गायब हो जाएगा, और हस्ती का कामिल और हमेशा से बरकरार हकीकी फहम सामने आएगा। ये कहना गलत है कि सच्चाई और गलती पैदाइश में बाहम मिलते हैं। यीशु की इलाही पैदाइश ने उसे तख्लीक के हकायक को वसी करने और उस वाहिद अकल को जो इंसान और कायनात को खल्क करता और उस पर हुक्मरानी करता है, ظاہر کرنے کے لیے انسانی طاقت کی نسبت بہت زیادہ عطا کیا۔ تخلیق کی سائنس نے جو یسوع کی پیدائش میں بہت واضح تھی، اس کے عقل ترین اور کم سمجھے جانے والے اقوال کو الہامی بنایا، اور یہ اس کے حیرت انگیز اظہارات کی بنیاد تھا۔ یسوع نے کسی بدنی تعلق کو تسلیم نہیں کیا۔ اس نے کہا، زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ اس نے دوبارہ کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی، یہ مطلب دیتے ہوئے کہ یہ وہی ہیں جو اس کے باپ کی مرضی بجا لاتے ہیں۔ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ریکارڈ نہیں کہ وہ کسی شخص کو باپ کے نام سے پکارتا ہو۔ وہ روح خدا کو واحد خالق کے روپ میں جانتا تھا، اور اس لیے اسے بطور سب کا باپ بھی جانتا تھا۔ لامتناہی عقل ابدیت کے ذہنی مالیکیول کی طرف سے سب کو خلق کرتی اور ان پر حکومت کرتی ہے۔ سب کا یہ الہی اصول اس کی تخلیق کی پوری سائنس اور آرٹ اور انسان اور کائنات کی لافانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تخلیق ہمیشہ سے ظاہر ہو رہی ہے، اور اسے اپنے لازوال ذرائع کی فطرت کے باعث ظاہر ہونا جاری رکھنا چاہیے۔ بشری فہم اس ظہور کو الٹ کر دیتا ہے اور خیالات کو مادی کہتا ہے، لہٰذا غلط تشریح کے ساتھ الہی خیال انسانی یا مادی عقیدے کے معیار تک گرتا دکھائی دیتا ہے، جسے مادی انسان کہا جاتا ہے۔ لیکن بیج اس کے اندر ہی ہے، محض ایسے ہی جیسے الہی عقل سب کچھ ہے اور سب کچھ پیدا کرتی ہے، جیسے عقل کثیر کرنے والی ہے اور عقل کا لامتناہی خیال انسان اور کائنات پیداوار ہے۔ واحد ذہانت یا سوچ کا مواد ایک بیج یا ایک پھول خدا ہے جو اس کا خالق ہے۔ لافانیت سے متعلق اس کی تاریخ میں ڈارون کا ارتقائی نظریہ مادی بنیادوں پر دیگر نظریات کی نسبت زیادہ مقبول ہے۔ مختصراً ڈارون کا نظریہ یہ ہے کہ عقل خود کے مخالف مادے کو جنم دیتی ہے، اور اس مادے کو کائنات بشمول انسان کو تقویت دینے کے لیے طاقت بخشتی ہے۔ مادی ارتقاء بیان کرتا ہے کہ عظیم پہلی وجہ کو مادی بننا چاہیے، اور اس کے بعد عقل کے پاس یا خاک اور عدم میں لوٹ جانا چاہیے۔ صحائف بہت پاک ہیں، ہمارا مقصد ان کے روحانی فہم کو حاصل کرنا ہونا چاہیے، کیونکہ صرف فہم ہی کی بدولت ہم سچائی پا سکتے ہیں۔ کائنات کا بشمول انسان حقیقی نظریہ مادی تاریخ میں نہیں بلکہ روحانی ترقی میں ہے۔ الہی سوچ کائنات کے ایک مادی، جسمانی اور فانی نظریے کو ترک کرتی ہے، اور روحانی اور لافانی کو اپناتی ہے۔ صرف روحانی ارتقاء ہی الہی قوت کی مشق کرنے کے قابل ہے۔ مادی فہم وجودیت کے حقائق کو اجاگر نہیں کرتا، بلکہ روحانی فہم انسانی شعور کو ابدی سچائی میں بلند کرتا ہے۔ انسانیت روحانی سمجھ میں گناہ کے فہم سے آہستہ آہستہ باہر نکلتی ہے۔ سب باتوں کو بہتر سمجھنے کے لیے ناپسندیدگی مسیحی مملکت کو زنجیروں میں جکڑتی ہے۔ جو کچھ بھی عقل، زندگی، سچائی اور محبت کی عکاسی کرتا ہے، وہ روحانی طور پر سمجھا اور سامنے لایا جاتا ہے۔ مگر یہ بیان اس ابدی سچائی کی مخالفت کرتا ہے کہ انسان نے روحانی اور مادی دونوں لحاظ سے، یا خدا اور انسان دونوں کی جانب سے جنم لیا اور فروغ پایا ہے۔ ادوار کی ساری خود نمائی ان دونوں تضادات کو سچ کبھی نہیں بنا سکتی۔ الہی سائنس اس بھرم کی جڑ پر کلہاڑا رکھتی ہے کہ زندگی یا عقل مادی بدن میں یا وسیلے سے بنایا گیا، اور سائنس نتیجتاً اس بھرم کو غلطی کی خودکار تباہ کاری کے وسیلہ نیست کرتی اور زندگی کی سائنس کے فہم کو خوبصورت بناتی ہے۔ کرسچن سائنس تخلیق کو نہیں بلکہ افشائی کو پیش کرتی ہے۔ یہ مالیکیول سے عقل تک کی مادی ترقی کو نہیں بلکہ انسان اور کائنات کے لیے الہی عقل کی عنایت کو ظاہر کرتی ہے۔ متناسب طور پر جب انسانی نسل ابدی کے ساتھ روابط کو ختم کر دیتی ہے، تو ہم آہنگ ہستی کو روحانی طور پر سمجھا جائے گا، اور وہ انسان ظاہر ہوگا جو زمینی نہ ہو بلکہ خدا کے ساتھ باہم ہو۔ یہ سائنسی حقیقت کہ انسان اور کائنات روح سے مرتب ہوتے ہیں اور اسی طرح روحانی بھی ہوتے ہیں، الہی سائنس میں اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے جتنا کہ یہ ثبوت ہے कि फ़ानी बशर सिर्फ तभी सेहतमंदी का फहम पाते हैं जब वो गुनाह और बीमारी का फहम खो देते हैं। ये मानते हुए कि इंसान खालिक है, बशर खुदा की तख्लीक को कभी नहीं समझ सकते। पहले से तख्लीक शुदा खुदा के फर्जंद सिर्फ तब अपनी पहचान पाते हैं जब इंसान हस्ती की सच्चाई को पा लेता है। सच्चाई ये है कि हकीकी मिसाली इंसान इसी तनासुब में जाहिर होते हैं जब झूठे और मादी गायब होते हैं। मजीद शादी ना करना या शादी में दिए जाना ना ही इंसान के तसलसल को बंद करता है और ना ही खुदा के लामतनाही मनसूबे में उसकी बढ़ती हुई तादाद के फहम को बंद करता है। रूहानी तौर पर यह समझना कि मासवाई एक खालिक खुदा के और कोई नहीं सारी तख्लीक को अयां करता, सहाइफ की तस्दीक करता, अलहदगी या दर्द और अजली और कामल और अब्दी इंसानियत की शीरी यकीन दहानी लाता है। तख्लीकी असूल जिंदगी, सच्चाई और मोहब्बत खुदा है। कायनात खुदा की अकासी करती है। एक खालिक और एक तख्लीक के सिवा और कोई नहीं। ये तख्लीक रूहानी ख्यालात और उनकी शनाख्तों के अया होने पर मुश्तमिल है जो लामहदूद अकल के दामन से जुड़े हैं और हमेशा मुनक्स होते हैं। ये ख्यालात महदूद से लामहदूद तक वसी हैं और बुलंद तरीन ख्यालात खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरियाँ साइशों की अकासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकिन को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इसलाहों, गलत तासरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना जहनी आरा के ख़िलाफ़ ख़ुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।